बेबी को मम्मा चाहिए, फिर डैडी बेबी से एंग्री हो जाते थे। बेबी अब आपके बिना नहीं रहेगी ना, आप बेबी को छोड़कर नहीं जाएंगी ना। इतना दर्द था उसके बातों में, तड़प थी जिसे उसने इतनी सी उम्र में सहा था। कितना तरसी थी वो माँ के प्यार और दुलार के लिए कि अब अगर आरवी एक मिनट के लिए भी उसकी आंखों से ओझल होती थी तो वो व्याकुल हो जाती थी। आज भी उसके मन में ये डर काबिज था कि आरवी उसको छोड़कर चली जाएगी। उस मासूम सी बच्ची के दिल में कितना कुछ था जिसे शायद कभी कोई समझ ही नहीं सका था। तभी कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का होना बहुत जरूरी होता है। वो उसकी कही अनकही बातों को समझ जाती है क्योंकि वो उसकी माँ होती है। वो बच्चा उसका अभिन्न हिस्सा होता है। वो उसके दर्द तकलीफ को बिना बोले ही समझ जाती है क्योंकि वो खुद भी उसी दर्द और तकलीफ को महसूस करती है, जैसे अभी आरवी कर रही थी। अंशु की तकलीफ उसके डर को खुद में महसूस, अंशु की मासूमियत भरी बातें जिनमें उसका डर और तड़प झलक रही थी, उसे सुनकर आरवी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। उसने तड़पते हुए अंशु को अपने सीने से चिपका लिया। नहीं बेटा, आपकी मम्मा आप कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। अपनी मम्मा को माफ कर दीजिए बेटा, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको सोता छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, वहां इतनी देर रुकना नहीं चाहिए था। मैं जानती थी आपको उठते ही मम्मा चाहिए होती है, आप तो नींद में भी अपनी मम्मा को ढूंढती हैं। फिर भी मैं आपको छोड़कर चली गई और आने में इतनी देर लगा दी। मम्मा बहुत केयरलेस हैं, मेरी वजह से आप इतना रोई। माफ कर दीजिए बेटा, आगे से मम्मा कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो रोते हुए बोल रही थी और अनुपमा जी नम आंखों से उसे देख रही थी। जो कभी उनकी चंचल बेटी बन जाती है, अभी उसका ममता भरा रूप देखकर वो भाव विहोर हो गई थी। सच ही कहते हैं, किसी बच्चे पर निस्वार्थ ममता न्यौछावर करने के लिए उसको अपनी कोख से जन्म देना जरूरी नहीं है। उसके दर्द को समझने के लिए उसकी प्रसव की पीड़ा सहकर दुनिया में लाना जरूरी नहीं है। अगर कोई दिल से उस बच्चे को अपना ले तो बिना जन्म दिए भी वो उसकी माँ बन जाती है, जैसे आरवी और अंशु का रिश्ता था। दोनों के बीच देखें तो कोई रिश्ता नहीं था, पर अंशु को उसमें अपनी माँ दिखती थी। उसके लिए वही उसकी माँ थी और उसको बस उसकी ममता की छाँव में रहने की चाह थी। आरवी, वो तो खुद को पूरी तरह उसकी माँ स्वीकार कर चुकी थी। उसके लिए अंशु उसकी बेटी थी जिस पर वो अपना सारा प्यार, ममता और अपनी जान न्यौछावर करती थी। उसकी एक मुस्कुराहट पर वो खुशी खुशी अपनी सारी खुशियां वारने को तैयार हो जाती, क्योंकि उसकी एक मुस्कुराहट उसके लिए उन खुशियों से कहीं ज्यादा कीमती थी। कितना पाक था उनका रिश्ता, बिल्कुल ऐसा जैसे एक माँ और उसके नन्हे शिशु का होता है। प्यार की डोर से बंधे थे दोनों और एक दूसरे को वो संपूर्ण करते थे। आरवी ने कुछ देर बाद उसे खुद से अलग किया, फिर अपनी हथेली से उसके चेहरे पर फैले बालों को पीछे करते हुए उसने उसके आंसुओं को साफ किया और उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। अंशु अब शांत हो चुकी थी। आरवी ने अब उसका मुंह धुलवाया और जैसे एक माँ अपने आंचल से अपने बच्चे का मुंह पोंछ देती है, वैसे ही उसने अपने दुपट्टे से उसके चेहरे को पोंछते हुए कहा, चलिए मम्मा बेबी को यमी यमी खाना खिलाती है, बेबी को भूख लगी होगी ना। अंशु ने बड़ी ही मासूमियत से हामी भर दी। आरवी जाने के लिए पलटी तो सामने से अनुपमा जी खाने की प्लेट लेकर आ रही थी। उन्होंने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहिए अंशु के पास, नीचे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अंशु शरारत में ठीक से खाना नहीं खाएगी, इसलिए यहीं बिठाकर आप उन्हें खाना खिलाइए और अब उनके पास ही रहिएगा, बहुत रोई है वो आपके लिए। माँ, अंशु इतना रो रही थी तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर मुझे पता होता कि वो उठ गई है तो मैं तभी वापस आ जाती, बेवजह अंशु इतना रोई। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी ने हल्के गुस्से से कहा, फोन देखिए अपना, इतनी बार हमने आपको फोन किया था, यहाँ बेचारी हमारी लाडो का रो रोकर बुरा हाल था और आप फोन ही नहीं उठा रही थी। शुक्र मनाइए हमने आपको कुछ कहा नहीं, वरना जैसे आपकी वजह से हमारी बच्ची रोई है हम आपको अच्छे से डांट लगाते, फिर आप दोबारा कभी ऐसी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करती। आरवी चौंक गई। उसने तुरंत अपने बैग से फोन निकालकर देखा तो अनुपमा जी के 15 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थे, पर फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसको पता ही नहीं चल सका। उसको खुद पर और गुस्सा आने लगा। उसने अनुपमा जी को देखा तो वो गुस्से से उसको घूरे जा रही थी। आरवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सर झुकाकर कहा, वो दोपहर में अंशु को सुला रही थी, तब कंपनी का बार बार फोन आ रहा था तो तंग आकर मैंने फोन साइलेंट पर कर दिया था ताकि अंशु की नींद खराब ना हो, फिर बाद में उसको वॉइस पर करना ही भूल गई, इसलिए पता नहीं चला कि कब फोन आया।
मेरी ही गलती है, अब मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर आपको मुझे डांटना है तो डांट लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी और दोबारा ऐसी गलती भी नहीं करूंगी। आप बस अंशु का ध्यान रखिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। वैसे भी कुछ देर बाद आप चली ही जाएंगी, कुछ देर और हमारी बेटी हमारे पास है, उसमें भी हम आपको डांटें? इतनी भी बुरी माँ नहीं है हम, अनुपमा जी ने जैसे ही कहा, आरवी ने सर उठाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोली, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। अंशु, जो तब से दोनों की बात सुन रही थी, अब उसने एकदम से कहा, नो मम्मा, बेबी की मम्मा बेस्ट मम्मा है। दोनों की निगाहें अंशु की तरफ घूम गई, जो गंभीर लग रही थी और अपनी प्यारी प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए उन दोनों को देख रही थी। उसकी बात सुनकर आरवी ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, मतलब आपकी मम्मा बेस्ट है और आपकी मम्मा की मम्मा बेस्ट नहीं है? नानी बेस्ट नानी है मम्मा, और मम्मा बेस्ट मम्मा है, अंशु ने इतनी मासूमियत से जवाब दिया कि दोनों के लब मुस्कुरा उठे। अनुपमा जी अंशु के माथे को चूमकर वहां से चली गईं। नीचे स्टूडेंट्स बैठे थे तो वहां जाना भी जरूरी था। अंशु आरवी की गोद से उतरने को ही तैयार नहीं थी, तो आरवी ने उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर उसको लेकर नीचे चली गई। अब तक बच्चों की छुट्टी हो गई थी, कुछ देर में आरवी को निकलना था, जिसके बारे में उसने शान को कुछ नहीं बताया था। पिछले कुछ दिनों से बात ही नहीं हुई थी दोनों की। आरवी को वापस जाना था, तो अब वो और अंशु कुछ वक्त बिता रहे थे अनुपमा जी के साथ। शाम गहराई तो आरवी फिर वापस आने का बोलकर और उनको एक माँ की तरह करोड़ों हिदायतें देकर वहां से निकल गई। रेहान सीधे शान के कैबिन में पहुंचा, तब शान कार्तिक से कुछ बात कर रहा था। रेहान को अचानक वहां देखकर शान थोड़ा हैरान हुआ, वहीं कार्तिक ने उसको ग्रीट किया, फिर शान की दी फाइल लेकर वहां से चला गया। रेहान ने जब कैबिन में कदम रखा था तो वहां का माहौल बहुत सीरियस लग रहा था, तो उसको कुछ अजीब लगने लगा। शान ने कार्तिक के जाते ही उससे सवाल किया, तो अचानक यहां कैसे टपक गया, वहां का काम खत्म हो गया इतनी जल्दी? रेहान ने उसके सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसके सामने बैठते हुए उल्टा उसी से सवाल कर दिया, क्या हो रहा था यहाँ? देख, झूठ तो बोलिए ही मत, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो तेरे चेहरे पर नफरत और घृणा के भाव थे, आंखों में गुस्सा था, मतलब कुछ तो चल रहा था तेरे दिमाग में। और वो कैसे पेपर्स थे जो तूने कार्तिक को दिए? तेरी आंखों आंखों वाली बातें समझता हूँ मैं, इसलिए अब सच सच बता दे, क्या करने जा रहा है तू?
रेहान उसको तीखी निगाहों से घूर रहा था, पर शान के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। उसने सहजता से जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, हमारे प्लान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा हूँ। आज ही लॉयर के वहां से पेपर्स रेडी होकर आए हैं। जब तू आया तब मैं कार्तिक को वही समझा रहा था कि आगे उसको क्या और कैसे करना है। अब तू बता, तू अचानक यहाँ कैसे? मतलब आज वो पेपर्स नेहा के पास पहुंचने वाले हैं? रेहान ने उसके सवाल की जगह फिर से उसी से सवाल कर दिया। शान ने हामी भरी तो रेहान ने आगे कहा, तुझे सच में लगता है नेहा ये काम करेगी? वो क्या, उसका बाप भी करेगा। इस वक्त उसको मेरी जरूरत है और मुझे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगी। ये तो बहुत आसान काम है उसके लिए। अगर वो ऐसा कर देती है तो उसको एहसास भी नहीं होगा और वो अपने ही हाथों अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेगी। तुझे हासिल करने की चाह में जो अभी उसके पास है वो सब खो देगी, रेहान ने कहा। तो उसकी बात सुनकर शान के लबों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। कुछ देर बाद उसने फिर से रेहान से सवाल किया, अब तू बताएगा कि क्यों आया है यहां बिना बताए? रेहान ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं यहाँ अपनी खुशी तेरे साथ बांटने आया हूँ, क्योंकि तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। अच्छा, और कौन सी खुशी बांटने आया है तू मुझसे? शान ने भौं उचकाकर उसको देखा। उसका सवाल सुनकर रेहान ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, तेरे यार को प्यार हो गया, प्यार हो गया है? कौन अब इस प्यार के दरिया में कूद कर खुदकुशी करने जा रहा है? शान व्यंग्य भरे लहजे में सवाल किया, जिस पर रेहान भड़क गया। कितने यार हैं तेरे? तू इकलौता ही है, पर ये तो बता कि हम सबकी हालत देखकर भी तुझ में प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की चाहत ने कैसे जन्म ले लिया? शान ने एक बार फिर उसको छेड़ा, पर वो मजाक नहीं कर रहा था, बहुत सीरियस लग रहा था वो। उसकी बात सुनकर रेहान ने भी गंभीरता से जवाब दिया, प्यार बुरी चीज नहीं है यार, वो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो जिंदगी को अनेकों रंगों और खुशियों से भर देता है, बशर्ते आपने दिल सही इंसान से लगाया हो। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरी नजरों में तो प्यार आग का वो दरिया है जिसमें इंसान झुलसकर राख में तब्दील हो जाता है। इसलिए जितना हो सके इस इश्क नाम की बला से दूर ही रहना चाहिए, वरना ये इश्क बड़ी बेरहमी से महबूब का कत्ल भी करवाता है और किसी को खबर तक नहीं होती। प्यार के बारे में तेरी सोच बहुत जल्द बदलेगी। खैर, तू ये कैसी बातें लेकर बैठ गया है? यहाँ मैं तुझसे अपनी खुशी बांट रहा हूँ और तू ये पूछने की जगह कि वो कौन है जिसने तेरे यार का दिल चुराया है, इन बकवास बातों में मुझे उलझा रहा है। इतनी बेताबी है तो चल बता दे, किसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला है तू? उसका सवाल सुनकर रेहान चिढ़ उठा और गुस्से से बोला, कमीने, मैं तेरा खून कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, इतना भड़क क्या रहा है, मजाक था, चल बता किसने तेरा दिल चुरा लिया है।
तू उसे जानता है। रेहान मुस्कुराकर उसको देखने लगा। शान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद भी जब वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका तो खींचते हुए बोला, अगर बताना है तो सीधे सीधे बक, वरना जैसे आया है वैसे ही निकल जा, क्योंकि अभी मेरे पास तेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति या बूझो तो जाने खेलने का ना वक्त है और ना ही मेरा ऐसा मूड है। शान का रवैया देखकर रेहान ने मुंह बिगाड़ते हुए उसको देखा। शान उसको गुस्से से घूरने लगा तो आखिर में रेहान को ही झुकना पड़ा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी की दोस्त रश्मि। उसके इतना कहते ही शान के मुंह से हैरानी से निकला, वॉट, किसका नाम लिया तूने? रश्मि, भाभी की दोस्त, तेरी साली और मेरी असिस्टेंट, रेहान ने सहजता से जवाब दिया। तेरा दिमाग विमान तो ठीक है, सारी दुनिया में तुझे वही एक लड़की मिली दिल लगाने को? हाँ, क्यों, क्या बुराई है उसमें? बुराई ये पूछ की अच्छाई क्या है, तुझे पता भी है कितनी बदतमीज है वो, एक नंबर की लड़ाकू है, बात करने की जरा भी तमीज नहीं है उसमें। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में भगवान ने शायद बदतमीज लोगों को ही लिखा है, जैसे सालों से तेरी बदतमीजी और रूडनेस झेलता है हूं, आगे से उसकी बदतमीजी भी झेल लूंगा। रेहान मुस्कुराया। शान उसको गुस्से से घूरने लगा, फिर चिढ़ते हुए बोला, अच्छी बात है, जब तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दियो कि कल मॉम डैड के साथ मैं रश्मि के पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ और तुझे भी मेरे साथ चलना है, तू वक्त पर घर पहुंच जाइयो। शान ने उसकी बात सुनी तो तुरंत ही भड़कते हुए बोला, रिश्ता तेरा हो रहा है तो तू जाना, मैं क्यों जाने लगा वहां? तू वहां मेरे साथ चल रहा है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसके आगे मुझे कोई बहस नहीं करनी है, वैसे भी भाभी भी आने वाली है वहां, सोच ले अगर तू आएगा तो उनसे मिल सकेगा, वैसे भी इतने दिनों से वो अपने मायके में है तो याद तो आती ही होगी तुझे उनकी, इसी बहाने मिल लियो उनसे। रेहान अब उसको छेड़ रहा था और साथ ही उसका मन टटोलने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिल में आरवी को लेकर कुछ है या नहीं। आरवी का जिक्र होने पर शान कुछ पल खामोश हो गया। सच ही तो कह रहा था वो, इतने दिन हो गए थे उसको देखे हुए, उससे बात किए हुए, याद तो आती ही थी उसकी, पर जल्दी ही उसने अपने ख्यालों को रोक लिया और उसको घूरते हुए बोला, मैं क्यों करने लगा किसी को भी मिस, जिसे जहां जाना है जाए, जितने मर्जी दिन रहना है रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ जाए, उसके बिना न सुबह सुबह होती है न रात। उसने अपनी भावनाओं को छुपा तो लिया था, पर जब पल भर को उसके चेहरे पर उसके दिल के भाव उभर आए थे, रेहान ने उसे देखा भी और सब समझ भी गया, और वो ये जानकर खुश था कि एटलीस्ट शान ने आरवी को मिस तो किया। उसको आरवी की कमी खाली मतलब उसके दिल में आरवी को लेकर एहसास पनपने लगे हैं, पर वो ये भी जानता था कि शान इतनी आसानी से अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करेगा, तो उसने बात बदलते हुए कहा, हाँ तो भाभी के साथ अंशु भी तो आएगी ना, उसी से मिल लियो। चल तू इतना कह रहा है तो कोशिश करूंगा, जगह और टाइम बता दियो, अगर वक्त मिला तो आ जाऊंगा तेरी बर्बादी देखने। उसने ऐसे जताया जैसे वो उस पर कितना बड़ा एहसान कर रहा हो, पर रेहान सब समझ भी रहा था और मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। कुछ देर दोनों की बातें हुई, फिर रेहान वहां से चला गया, शान भी अपने काम में लग गया, पर अब आरवी का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, कल वो उसको इतने दिनों बाद देखेगा, ये सोचकर ही धड़कनों की लय बढ़ गई थी। टू बी कंटिन्यूड, अगले भाग में आपको आपके प्यारे शान और आरवी साथ में देखने को मिलने वाले हैं, तो खुश हो जाइए।